पृष्ठ संख्या 113 6 सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय ब्रैकेट में 1911 से 1986 भी शुद्ध आलोचक न होते हुए भी अपने आलोचनात्मक विचारों के लिए हिंदी आलोचना के इतिहास में इसलिए उल्लेखनीय है कि उन्होंने नई कविता के आस्वाद और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नई आलोचना के लिए आधार तैयार किया है। तीसरा, सप्तक की भूमिका में कवियों को आलोचना कर्म की ओर प्रवृत्त करने के लिए उन्होंने लिखा है कि नई कविता का अपने पाठक और स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व तो बढ़ गया है, यह मानकर कि शास्त्रीय आलोचकों से उसे सहानुभूतिपूर्ण तो क्या पूर्वग्रह रहित अध्ययन भी नहीं मिला है। यह आवश्यक हो गया है कि स्वयं आलोचक तटस्थ और निर्मम भाव से उसका परीक्षण करें। दूसरे शब्दों में, परिस्थिति की मांग यह है कि कविगण स्वयं एक दूसरे के आलोचक बनकर सामने आए। आगे चलकर भवंती में इस आपद धर्म को स्पष्ट करते हुए उन्होंने यह भी लिखा कि आलोचना गौण या उपजीवी कर्म भले ही हो, कवि को उसकी आवश्यकता रहती है। आलोचना की अनुपस्थिति में वह मुरझाता है, उसकी प्रतिभा मलिन होती है। बहरहाल, अपनी प्रतिभा को मुरझाने से बचाने के लिए अज्ञेय ने बराबर आलोचनाएं लिखी। उनमें अपनी कविता की व्याख्या के साथ ही अपने कुछ समकालीन कवियों की समीक्षाएं भी शामिल हैं और काव्य तथा साहित्य संबंधी कुछ सैद्धांतिक स्थापनाएं भी। नई कविता और उसमें भी विशेष रूप से अपनी कविता की भावभूमि और रचना प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए अज्ञेय ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया है। त्रिशंकु काल के निबंधों में इलियट के प्रभाव के अंतर्गत अज्ञेय ने काव्य के निर्वैयक्तिक सिद्धांत की स्थापना की, जो मूलतः छायावादी काव्य सिद्धांत का विरोधी है। कविता को अज्ञेय निरंतर निर्वैयक्तिक रचना पृष्ठ संख्या 114 एवं अहम के विलयन का साधन मानते रहे, शायद आज भी मानते हैं। आत्मने पद में संकलित अपने वैयक्तिक निबंधों में उन्होंने आज के कवि से अपने को अलगाते हुए कहा, आज का कवि तो कविता को वरंच व्यक्तित्व की व्यक्ति के अहम की प्रखरतर अभिव्यक्ति और उस अहम को पुष्ट करने वाली रचना मानता है। मैं कहूँ कि इस चरम कोटि का आधुनिक कवि मैं नहीं हूँ, अधिक से अधिक उस श्रेणी में हूँ जो कविता को अहम के विलयन का साधन मानते हैं। दूसरे सप्तक की भूमिका में उन्होंने कवि के लिए परंपरा के महत्व और उसके उपयोग की प्रक्रिया की चर्चा की। यहाँ भी वह इलियट से प्रभावित प्रतीत होते हैं और परंपरा को एक गहरे संस्कार के रूप में आत्मसात करने पर बल देते हैं। आरंभ में फ्रायड और एडलर के मनोविश्लेषण से प्रभावित होकर अज्ञेय ने साहित्य में मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, किंतु आगे चलकर उसे छोड़ दिया। परवर्ती निबंधों में कविता के संदर्भ में मनोविज्ञान का जिक्र उन्होंने छोड़ दिया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, पर वह भंगिमा कुछ और ही थी। दिलचस्प बात तो यह है कि तारसप्तक के दो कवि अज्ञेय और मुक्तिबोध लगभग समानांतर काव्य रचना भी कर रहे थे और काव्य की आलोचना भी, जिसमें सैद्धांतिक स्थापनाएं और व्यावहारिक समीक्षाएं दोनों शामिल थीं। कहीं कहीं तो प्रश्न भी एक ही था, पर उत्तर अपने अपने थे। मुक्तिबोध ने नई कविता का सौंदर्य शास्त्र निर्मित करने का प्रयास अपने ढंग से किया और अज्ञेय ने अपने ढंग से अहम और इदम के बीच परिस्थिति जन्य तनाव का तीखा बोध दोनों को था। अज्ञेय ने आत्मने पद में लिखा था, आधुनिक कविता पर मनोविज्ञान की गहरी छाप है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति और उसकी परिस्थिति में इतना कम सामंजस्य, इतना तीखा विरोध कभी नहीं हुआ और उस विरोध के दबाव कि कवि के मन पर गहरी छाप है, इतनी गहरी कि वह उसे सीधे सीधे व्यक्त नहीं कर पाता है, केवल ध्वनित करता है, केवल एक संकेत देता है जिससे हम आगे बढ़कर उसे देख सकें। एक सौंदर्य होता है जो बाहर फुलवाड़ी में बैठता है, एक होता है जो घर में रहता है और अतिथियों द्वारा देखा जा सकता है, एक और होता है जिसे हम बंद कमरे की खिड़की से आते हुए आलोक को देखकर अपनी संवेदना के सहारे ही मूर्त कर लेते हैं। मानसिक तनाव से धनुष की प्रत्यंचा सी तनी हुई अंतर जीवन की तीखी चेतना के स्वर सी संयत, लेकिन जीवन की विविधता के बोध से विश्रृंखल होती हुई भी पृष्ठ संख्या 115 आज की कविता का सौंदर्य इस तीसरी कोटि का ही सौंदर्य है। नई कविता की सौंदर्य चेतना का यह विश्लेषण उनके द्वारा काव्य में प्रतीक के महत्व निरूपण से जुड़ा है। मुक्तिबोध और अज्ञेय की अपनी काव्य रचना प्रक्रिया के विश्लेषण में एक दिलचस्प अंतर कविता की बनावट को लेकर है। यह अंतर बनावट का नहीं भावबोध का अंतर है। मुक्तिबोध अपनी बात बिना लंबी नाटकीय कविता के कह नहीं पाते और कहते हैं तो बात जैसे अधूरी रह जाती है। इसके ठीक विरुद्ध अज्ञेय ने बहुत छोटी छोटी कविताएं लिखी हैं, क्योंकि उन्हीं के शब्दों में छोटी कविता को महत्व भी देता हूँ। नावक के तीर वाली बात ही नहीं है। यूं भी मैं मानता हूँ कि भावना प्रधान कविता छोटी ही हो सकती है, नहीं तो भावों का पैराफ्रेज होने लगता है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, वह एक आंसू बनकर आए। यहाँ तक तो ठीक है, किंतु जब वह बरसात की झड़ी सी बरसने लगती है तब वह शायद वही पीड़ा नहीं रहती और घनीभूत तो भला रह ही कैसे सकती है। लंबी कविताएं भी होती हैं, हो सकती हैं, अच्छी भी हुई हैं, पर उनको कलात्मक एकता और गठन देने वाली चीज फिर दूसरी हो जाती है। भाव की संहति और तीव्रता नहीं, वह ढंग दूसरा है और कहूँ कि मेरा वह नहीं है। अज्ञेय की कविता क्यों प्रगीत और नाटकीय संरचनाओं से भिन्न बनावट की कविताएं होती हैं, इसकी इससे अच्छी व्याख्या शायद ही कोई आलोचक कर पाता। साहित्य में अज्ञेय प्रयोग पर विशेष बल लेते रहे हैं और देते हैं। यहाँ प्रयोग एक प्रकार का नवोन्मेषण है जिसका संबंध शब्द और अर्थ दोनों से है। उनके विचार से अनुभव की अद्वितीयता और अर्थ की साधारणता प्रतिभा के ये दो इष्ट हैं, या कहा जाए कि इन दो ध्येयों का योग ही उसका इष्ट है। अपनी प्रयोगशीलता के सिद्धांत की पुष्टि के लिए उन्होंने हिंदी के कुछ प्राचीन कवियों का भी पुनर्मूल्यांकन किया है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य 1967 ईस्वी में संकलित केशव की कविताई शीर्षक संवादात्मक रचना काफी दिलचस्प है। हिंदी कविता के संकलन पुष्करिणी की भूमिका के रूप में आधुनिक कविता की विस्तृत आलोचना भी विशेष महत्वपूर्ण है। यह भूमिका बाद में हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य में खड़ी बोली की कविता पृष्ठभूमि शीर्षक से निबंध रूप में प्रकाशित हुई। यह निबंध कुछ ऐसी पृष्ठ संख्या 116 स्थापनाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो अज्ञेय की अपनी थी। उदाहरण के लिए खड़ी बोली के रचनात्मक रूप के निर्माण और प्रभाव का श्रेय मैथिली शरण गुप्त को इतनी दूर तक देना। उन्होंने जो चलाया वह तो चला ही, जो निषेध किया वह छूटा ही, पर उन्होंने निषेध नहीं किया, केवल स्वयं नहीं बरता, उसका बरतना केवल इतने ही से कठिन हो गया कि उन्होंने उसे नहीं अपनाया। अपनी बात की पुष्टि में उन्होंने प्रमाण पेश किया। हिंदी छंद में लघु गुर संबंधी रियायतें तो द्विवेदी काल तक प्रचलित थीं और जो उर्दू में आज भी सजीव बनी हुई हैं, केवल गुप्त जी के द्वारा प्रयुक्त ना होने के कारण अब प्रचलित हो गई और आज बरती जाती हैं तो उर्दू की मानी जाती हैं। इसी प्रकार छायावाद को अंग्रेजी के रोमांटिक दौर का प्रभाव स्वीकार करने वालों को अज्ञेय ने याद दिलाया कि यदि छायावादी आंदोलन की एक प्रेरणा हिंदी कवि द्वारा शैली और कीट्स का आविष्कार था, तो यूरोप के रोमांटिक आंदोलन की एक प्रेरणा यूरोपीय कवि द्वारा कालिदास का आविष्कार था। इस तरह वह हिंदी पर रोमांटिक काव्य के प्रभाव में दूरागत भारतीय प्रतिध्वनि यूं भी सिद्ध करते हैं कि उस काव्य से प्रभावित कवि पुनः कालिदास की ओर लौटे। पर यह लौटना महावीर प्रसाद द्विवेदी के लौटने से कुछ अलग किस्म का था, क्योंकि यहाँ भी नए परिचय का प्रश्न नहीं था, नई दृष्टि का ही प्रश्न था। छायावादी कवि की दृष्टि में वृत्तांत मुख्य ना था। उसने कहानी मानो पढ़ी ही नहीं, कालिदास नामक ऐन्द्रजालिक द्वारा सशरीर आंखों के सामने ला खड़ी की गई प्रकृति की अनिवर्चनीय मूर्ति को वह अपलक देखता रह गया। इस प्रकार अज्ञेय ने अपनी आलोचनात्मक टिप्पणियों के द्वारा नई कविता को प्रतिष्ठित करने के साथ ही उसके मूल्यांकन के प्रतिमान का निरूपण तो किया ही, इस नए प्रतिमान से पुराने कवियों का पुनर्मूल्यांकन भी किया। विजय देव नारायण शाही 1927 से 1982 ईस्वी अज्ञेय द्वारा संपादित तीसरे सप्तक में संकलित कवि भी हैं और अज्ञेय द्वारा प्रवर्तित नई कविता के महत्वपूर्ण सिद्धांतकार भी। शाही ने लंबे समय तक बहुत कम लिखा। आलोचना में उन्होंने दो निबंधों से ही अपनी पहचान बना ली। ये निबंध थे लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस और शमशेर की काव्य अनुभूति की बनावट, किंतु विचारों की मौलिकता और चिंतन की गहराई के कारण इन्हीं निबंधों का आज भी विशेष महत्व है। पहला निबंध नई कविता के 1960-61 के संयुक्तांक पृष्ठ संख्या 117 5-6 में प्रकाशित हुआ। यह निबंध बहुत सी बातों के लिए बराबर चर्चा और प्रेरणा का विषय रहा। लघुमानव की अवधारणा को केंद्र में रखते हुए और बहुत सी बातों के बीच उन्होंने परंपरा की व्याख्या की और अज्ञेय को उन्हीं प्रसाद की परंपरा से जोड़ा जिन्हें अज्ञेय केवल विश्वविद्यालयों का कवि मानते थे। यदि परंपरा हमेशा परिवर्तन और वैपरीत्य की दिशाओं में फूटती हुई चलती है तो अज्ञेय आगे के इतिहासकार को प्रसाद की परंपरा में ही दिखाई पड़ेंगे। पृष्ठ 120। यह जोड़ना अकारण न था। प्रसाद और अज्ञेय की समानता ने शाही को सहसा अचरज में डाला था। वही शालीनता, वही शब्दों की चौकसी, वही आभिजात्य और कुछ खुला हुआ और कुछ डूबा हुआ व्यक्तित्व। पृष्ठ 116। प्रसाद से अज्ञेय तक की इस संपूर्ण काव्य यात्रा को उन्होंने महत्व की तीन अवस्थाओं के रूप में समझाया। छायावाद में उसका रूप लघु की महानता का है, तीसरे दशक में लघु की महिमा का और उसके बाद की कविता में लघु के महत्व का है। पृष्ठ 115। छायावाद के बाद बच्चन, भगवती चरण, नवीन आदि जवानी और मस्ती के कवियों की कविता से गुजरकर अज्ञेय तक आने वाली काव्य चेतना को हीगेलियन शब्दावली में शाही ने मानवीय रूपों के थीसिस, एंटी थीसिस की सिंथीसिस कहा। पृष्ठ 119। शाही ने इस निबंध में आधुनिक हिंदी कविता की गहराई में जाकर अलक्ष्य सामाजिक चेतना को उद्भासित किया। उस युग के टेम्पर के साथ साहित्यिक संदर्भों को जोड़ते हुए उन्होंने साहित्य के लघु और महत के द्वंद्व का राजनीतिक संदर्भ स्पष्ट किया। गुलामी की स्थिति यथार्थ और लघुता की स्थिति थी और दूर कहीं पर, किंतु निश्चित या अनिश्चित काल के भीतर ही आज़ादी का लक्ष्य आदर्श और महत्व का लक्ष्य था। पृष्ठ 68। हिंदी के सत्याग्रह युग के साहित्य पर उन्होंने रोमांटिक विश्लेषण लगाने से परहेज किया और उसकी मानसिकता को शब्दबद्ध करते हुए कहा कि नैतिकता का उदात्तीकरण एक ऐसा विराट प्रभा मंडल है जिसके आगे सत्ता और शक्ति, क्रांति अथवा क्रमिक विकास के प्रश्न गौण हो जाते हैं। पृष्ठ 77। इस तरह शाही ने पश्चिम के रोमांटिसिज्म और हिंदी प्रदेश के छायावाद की मनोभूमि के बुनियादी अंतर को स्पष्ट करते हुए रेखांकित किया। दरअसल कविता संबंधी बहसों में शाही की दृष्टि बुनियादी बात की पकड़ पर रही है। शमशेर की काव्य अनुभूति की बनावट की चर्चा करते हुए पृष्ठ संख्या 118 उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि किसी कविता में जब बदलाव आता है तो वह सिर्फ बाह्य कलेवर का नहीं होता, गहरे स्तर पर अनुभूति से संबद्ध होता है। नई कविता की बहसों में यह मान्यता अंतर्भुक्त रही है कि न सिर्फ कविता का ऊपरी कलेवर बदलता है या नए प्रतीकों या बिंबों या शब्दावली की तलाश हुई है, बल्कि गहरे स्तर पर काव्य अनुभूति की बनावट में ही परिवर्तन आया है। लेकिन बहस में इस पर बल कम दिया गया है। चेतना के जो सत्व काव्य अनुभूति के आवश्यक अंग दिखते थे, उनमें से कुछ अनुपयोगी या सार्थक दिखने लगे। कुछ अन्य जो पहले अनावश्यक या विरोधी लगते थे, काव्य अनुभूति के केंद्र में आ गए। और कुल मिलाकर काव्य अनुभूति और जीवन की काव्येतर अनुभूतियों में जो रिश्ता दिखता था, वह रिश्ता भी बदल गया। विवेक के रंग पृष्ठ 69। अपने इस निबंध में शाही ने मलारमे की काव्य अनुभूति के सादृश्य पर शमशेर की कविता की बनावट को समझने का प्रयत्न भी किया। शाही की मृत्यु के एक वर्ष बाद हिंदुस्तानी अकेडमी से उनका जायसी विषयक चिंतन पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। इस कृति में व्याख्यानों के रूप में पठित और अपठित दोनों अंश सुनिबद्ध रूप में प्रकाशित हैं। चिंतन का क्रम जायसी के बारे में कुछ उधेड़बुन से शुरू होकर पद्मावत के विश्लेषण पर समाप्त होता है। उधेड़बुन से निकलने की प्रक्रिया में शाही कुछ ऐसे नतीजों पर पहुंचे हैं जो लीक से हटकर हैं, अप्रत्याशित हैं और विवादास्पद भी। विवाद उनके जीवन काल में ही आरंभ हो गया था। उन्होंने जायसी को न शोधार्थी की दृष्टि से देखा न निपट आलोचक की। उन्होंने अपने कवि हृदय की संवेदना के सहारे उनके काव्यत्व की गहराई की ठान ली और आग्रह किया कि जायसी की परख सूफी नहीं के रूप में की जानी चाहिए। उन्होंने पद्मावत की कथा की तथा कथित ऐतिहासिकता और उससे संबद्ध प्रमाणों की संदिग्धता का हवाला देते हुए उसे कवि कल्पना के रूप में देखने की वकालत की। पद्मावत का विश्लेषण इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण लेख है कि उसमें कथा की बनावट का विश्लेषण करते हुए शाही ने जायसी की मूल सृजनात्मक क्षमता का उद्घाटन किया है। कहना ना होगा कि यह सृजनात्मकता कवि की है, सूफी संत की नहीं। यूं शाही का कहना है कि जायसी अध्यात्मवादियों के बीच भौतिकवादी हैं और भौतिकवादियों के बीच अध्यात्मवादी। पृष्ठ 119। वस्तुतः जायसी की एक नई समझ के संदर्भ में शाही ने नई आलोचनात्मक भाषा और नए प्रत्यय दिए। उनके शेष आलोचनात्मक लेखों का संग्रह 1987 ईस्वी में छठवां दशक शीर्षक से प्रकाश में आया। इसके नाम के औचित्य और संकलित लेखों की प्रकृति की ओर संकेत करते हुए शाही ने लिखा था, चूंकि छठवें दशक के पिघलाने वाले ताप में ये लेख लिखे गए थे, इसलिए इनमें उस वक्त की गर्मी मौजूद है। पृष्ठ 11। लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपे थे संक्रांति के दौर में, इसलिए एकापन इसमें है भी और नहीं भी। छठवां दशक इन सभी में है। विषयों की विविधता इस हद तक है कि राजनीति और साहित्य तथा मैदान, पर्वतमालाएं और राजनगर से लेकर शमशेर की काव्य अनुभूति की बनावट तक सब इनमें शामिल है। साहित्य शाही के लिए स्वायत्त, आत्मनिर्भर, बंद कक्ष नहीं था। इस संग्रह के हर लेख के पीछे एक जीवित प्रसंग है, क्योंकि शाही के लिए वह एकदम जरूरी है। उनके समय का वैचारिक संघर्ष इन लेखों का अनिवार्य संदर्भ है। यही इनकी सार्थकता भी है और विशिष्टता भी। शाही अपने प्रखर चिंतन और तार्किकता से समर्थकों को प्रेरित और विरोधियों को उत्तेजित करते रहे। यह बात अलग है कि इन लेखों में वह विशेष चर्चा का विषय वह ही दो लेख हुए जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। शाही ने आलोचक की तरफ से कोई बड़ा दावा नहीं किया। वह इस बात को बखूबी समझते थे कि आलोचना किसी साहित्यिक कृति की संवेदना को जबरदस्ती खींचकर पाठक तक पहुंचाने का काम नहीं कर सकती। वह अधिक से अधिक उसे विविध प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त कर एक उचित तत्परता की अवस्था में छोड़ सकती है, यानी रेडियो की सुई को उत्तेजित लहर मान पर लाकर लगा भर देना आलोचक का काम है। कहना न होगा, शाही ने यह काम केवल कविता के पाठकों के लिए नहीं, कुछ दूर तक आलोचकों के लिए भी किया। लक्ष्मीकांत वर्मा 1922 से 2002 ईस्वी। वस्तुतः कवि तो अतुकांत के हैं, किंतु उन्होंने अपने आलोचना कर्म का आरंभ नई कविता की सहानुभूतिपूर्ण व्याख्या से किया, जिसका पहला दस्तावेज नई कविता के प्रतिमान 1957 है। इस पुस्तक की भावप्रवण व्याख्या शैली के कारण वर्मा जी की ख्याति नई कविता की शांतिप्रिय द्विवेदी के रूप में हुई। इसी क्रम में आगे चलकर उन्होंने पृष्ठ संख्या 120 विजय देव नारायण शाही की बौद्धिक प्रेरणा से नई कविता के मूल में लघु मानव की प्रतिष्ठा की, जिसके कारण वह कुछ समय तक विवादास्पद रहे, किंतु अज्ञेय केंद्रित नई कविता के प्रतिष्ठित होते ही वर्मा जी ने पैंतरा बदलकर नई कविता की छदम छायावादिता के खिलाफ जिहाद बोल दिया और उन्हें अज्ञेय, शमशेर, सर्वेश्वर, भारती, कुंवर नारायण आदि सभी सप्तकी कवियों की रूमानी भावुकता से चिढ़ सी हो चली। नए प्रतिमान पुराने निकष 1966 पुस्तक में संकलित ताजी कविता कुछ जोड़ बाकी शीर्षक निबंध इस परिवर्तित प्रवृत्ति का अच्छा उदाहरण है। वर्मा जी की मुख्य शिकायत यह है कि जिस लिरिकल मूड को पिछले 15 वर्षों से नया कवि तोड़ना चाहता था, आज वह पूरी तरह उस पर सवार है। पृष्ठ 291। उनके ख्याल से नई कविता और छायावाद के बीच अर्धचेतन में प्रयोगवाद के रूप में समझौता हुआ था, वही पृष्ठ 292। इसलिए उन्होंने रूमानीपन के गैर रूमानी काव्य सिद्धांत का रूप खड़ा किया। इस प्रकार लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के व्याख्याकार होने के साथ ही नई कविता के बाद की गैर रूमानी कविता के उद्घोषक भी हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी 1931 से 2003 ईस्वी सामान्यतः नवलेखन और विशेषतः नई कविता के उन व्याख्याकारों में हैं जिनकी काव्य रुचि का आधार अज्ञेय का कृति साहित्य है। उनकी पहली पुस्तक हिंदी नवलेखन 1960 ईस्वी बहुत एक सर्वेक्षण जैसा ही प्रयास है, किंतु आगे चलकर भाषा और संवेदना 1964 ईस्वी के साथ उन्होंने काव्य भाषा की सृजनशीलता को अपनी आलोचना का केंद्रीय विषय बनाकर विशेष दिशा अपनाई। उन्होंने घोषणा की कि आज की कविता को जांचने के लिए जो अब सचमुच प्रास के रजत पाश से मुक्त हो चली है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार कर चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी है, काव्य भाषा का प्रतिमान ही शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल और केंद्रीय स्थिति है। भाषा और संवेदना इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने के लिए चतुर्वेदी जी ने आधुनिक लेखकों में मुख्य रूप से अज्ञेय के साहित्य की मीमांसा की, जिसका फल है अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या 1968 ईस्वी। अज्ञेय की भाषा की सृजनात्मकता का विश्लेषण करते हुए उन्होंने तद्भव शब्दों के चयन को विशेष महत्व दिया है। अज्ञेय की भाषिक मीमांसा से आश्वस्त होकर चतुर्वेदी जी ने हिंदी के मध्यकालीन कवियों की काव्य भाषा के पृष्ठ संख्या 121 विश्लेषण का भी हौसला दिखाया। मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा 1974 इस दृष्टि से पर्याप्त महत्वाकांक्षापूर्ण प्रयास है, जिसमें संत कबीर दास से लेकर भिखारी दास तक सभी प्रमुख भक्तिकाल और रीतिकाल के कवियों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त चतुर्वेदी जी ने कामायनी का पुनर्मूल्यांकन 1970 नामक संक्षिप्त किंतु सारगर्भित पुस्तक के द्वारा एक महत्वपूर्ण काव्यकृति की मीमांसा के अध्याय से हिंदी में पुनर्मूल्यांकन को सही सही परिभाषित करने का प्रयास किया। इस पुस्तक का आरंभ इस प्रतिज्ञा से होता है कि पुनर्मूल्यांकन की बात साहित्य में तब आती है जब किसी रचना, कवि अथवा युग विशेष को देखने परखने की दृष्टि में गुणात्मक अंतर आ जाए। हर समय की दृष्टि से अलग मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा, क्योंकि संभव है कि वह पिछले मूल्यांकन का विस्तार अथवा पूरक हो। कहना ना होगा कि कामायनी का पुनर्मूल्यांकन इस प्रतिज्ञा के अनुरूप न किसी पहले के मूल्यांकन का विस्तार है और न ही पूरक। यह बात अलग है कि इस पुनर्मूल्यांकन की केंद्रीय स्थापना से सहमति कहाँ तक हो सकी अथवा परवर्ती मूल्यांकनों को इसने प्रभावित किया या नहीं। रामस्वरूप चतुर्वेदी की बाद की रचनाओं में भी बल भाषा केंद्रित अध्ययन पर ही रहा। नई कविताएं एक साक्ष्य 1957, गद्य की सत्ता 1977, सर्जन और भाषिक संरचना 1980 इसी दृष्टि से लिखे गए लेखों के छोटे छोटे संकलन हैं। अध्ययन का विषय बराबर भाषा के उपकरण शब्द बिंब आदि रहे हैं, संदर्भ संवेदना का हो या संरचना का। इनसे कुछ हटकर इतिहास और आलोचक दृष्टि 1982 में आलोचकों की आलोचना है। इतिहास के विभिन्न संदर्भों में उन्होंने रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, नंददुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा और देवराज की स्थापनाओं पर विचार किया है। यह ग्रंथ वस्तुतः उनके आगामी इतिहास की तैयारी है। इसका विषय रचनात्मक साहित्य नहीं, उनकी समीक्षा या इतिहास दृष्टि है, जिन आलोचकों को केंद्र में रखकर ये निबंध लिखे गए हैं। प्रश्न उनकी इतिहास दृष्टि पर उठाया गया है और चतुर्वेदी जी ने अपने आग्रहों के अनुरूप पक्ष विपक्ष में अपनी राय दी है। जाहिर है उनसे सहमति असहमति आंशिक ही हो सकती है, पूरे तौर पर नहीं। कुल मिलाकर रामस्वरूप चतुर्वेदी का महत्व तो यही है कि उन्होंने आधुनिक पृष्ठ संख्या 122 और प्राचीन कवियों की काव्य भाषा संबंधी सृजनशीलता के विश्लेषण के द्वारा हिंदी में नए ढंग की रूपवादी आलोचना का पथ प्रशस्त किया। नई कविता के अन्य कवि आलोचकों में गिरिजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह और धर्मवीर भारती के आलोचनात्मक प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शमशेर बहादुर सिंह 1911 ईस्वी से 1993 ईस्वी अपनी कविताओं के समान ही आलोचनाओं के द्वारा भी कवियों के कवि के रूप में सामने आते हैं। कला की जैसी बारीक परख शमशेर में है, वैसी अन्यत्र नहीं मिलती, अज्ञेय में भी नहीं। दूसरा सप्तक में उन्होंने जो कवि वक्तव्य दिया है, वह एक सच्चा कलाकार ही दे सकता था। उस वक्तव्य से इम्प्रेशनिज्म की शुद्ध कविता तथा कुछ कुछ प्रतीकवादी कविता के कला सिद्धांतों का अनुभव सम्मत विवेचन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त शमशेर ने हंस और नया साहित्य में काफ़ी दिनों तक समकालीन कृतियों की समीक्षाएं की, जिनका संकलन दोआब 1947 ईस्वी नाम से प्रकाशित हुआ। इन समीक्षाओं में तार सप्तक की समीक्षा उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त उनका मुक्त छंद शीर्षक निबंध इस विषय पर निराला के बाद का एकमात्र महत्वपूर्ण विवेचन है। उसी तरह जैसे चांद का मुंह टेढ़ा है कि विस्तृत भूमिका, मुक्तिबोध की कविताओं का अब तक किया गया सबसे अधिक सार्थक और विवेकवान विश्लेषण है, जिसमें एक संवेदनशील कवि की अचूक दृष्टि सर्वत्र दिखाई पड़ती है। शमशेर को प्रयोग की अज्ञेय भिन्न नई परिभाषा करने का भी श्रेय प्राप्त है। धर्मवीर भारती 1926 से 1997 ईस्वी प्रयोगशील नई कविता के पक्षधर प्रवक्ताओं में होने के कारण आलोचक कर्म में अधिक तत्पर दिखाई पड़ते हैं। उनके आलोचनात्मक लेखों के दो संग्रह प्रकाशित हुए, साहित्य और मानव मूल्य 1960 और पश्यंती 1969 ईस्वी। भारती ने मुख्य रूप से नई कविता के मूल्यों को सैद्धांतिक स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया है, और इस प्रक्रिया में उन्होंने पुरानी पीढ़ी की धुरीहीनता पर आक्रमण भी किया। उनके लेखों में सामान्यतः पत्रकारिता का रंग मिलता है। गिरिजा कुमार माथुर 1918 से 1994 ईस्वी नेतार सप्तक के कवि वक्तव्य में कविता के अंतर्गत प्रयोज्य टेक्निक का जैसा सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया है, उससे पंत के पल्लव के प्रवेश की सूक्ष्म शिल्प चर्चा याद आती है। कुछ दिनों बाद उन्होंने नए सिद्धांत, ध्वनियों के मौलिक अर्थ शीर्षक पृष्ठ संख्या 123 निबंध में उन्हीं मान्यताओं को विस्तार दिया, किंतु आगे चलकर नई कविता के अंतर्गत जब प्रतिष्ठा की होड़ मची, तो गिरिजा कुमार माथुर कोरी शिल्प चर्चा से आगे बढ़कर नई कविता की ऐतिहासिक पीठिका, नूतन भाव बोध, मानवीय मूल्यों का परिप्रेक्ष्य, रोमान और प्रतीकात्मकता जैसे सैद्धांतिक प्रश्नों पर विचार करने की दिशा में प्रवृत्त हो चले। उनके इन आलोचनात्मक निबंधों का संकलन अंततः नई कविता सीमाएं और संभावनाएं 1966 ईस्वी नाम से प्रकाशित हुआ। कविता के सामयिक दबाव के अनुरोध से उन्होंने अस्वीकृत कानोन्मेष शीर्षक विचारोत्तेजक निबंध भी लिखा। गिरिजा कुमार ने इन आलोचनात्मक लेखों का आधुनिक भाव बोध के वैज्ञानिक पक्ष के उजागर होने के अतिरिक्त कोई और विशेष महत्व है या नहीं, कहा नहीं जा सकता।